أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جزء میں ہم نے سورۃ التکاثر تک گزشتہ درس میں تمام کیا تھا۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ العصر سے کر رہے ہیں، پہلے تلاوت اور اس کے بعد مختصر اس کی وضاحت ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورة العصر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدا رحمان رحیم۔ آیت نمبر ایک، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ دو، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ سب سے پہلے عصر کا معنی دو طرح سے کیا گیا ہے۔ بعض نے اس سے نماز عصر کا وقت مراد لیا ہے اور اس کی مناسبت یہ بیان کی ہے کہ جو نماز عصر کا وقت ہوتا تھا جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس زمانے میں عام طور پر دکاندار حضرات، تاجر حضرات اپنی اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہوتے تھے اور حساب کتاب کر رہے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے عصر کی جو نماز ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر غفلت کا شکار ہو جاتے تھے اپنے دنیاوی کاروبار کے حساب و کتاب کو کرتے ہوئے۔ اور لہٰذا یہ سورہ نازل ہوئی کہ یہ عصر کا وقت، اس وقت جو تم عمل کر رہے ہوتے ہو اور نماز کو چھوڑ کر تم اپنی دنیا کے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہو، یہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یعنی وہ جو دنیا کے پیچھے دوڑ کر دنیا کے امور کو ترجیح دے کر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی نماز سے غافل ہو گئے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ تو بعض نے یہ مناسبت بیان کی اور بعض نے یہ بیان کیا کہ عصر سے مراد وقت نماز عصر نہیں ہے بلکہ عصر سے مراد زمانہ ہے۔ یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت، ہر اس انسان کے لیے کہ جس وقت بھی وہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ انسانیت کی تاریخ پر، گزشتہ زمانوں پر، موجودہ زمانے پر نگاہ ڈالے تو یہ زمانہ، یہ تاریخ انسانیت اسے اسی بات کی گواہی دے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالی اگلی دو آیات میں ارشاد فرما رہا ہے۔ بس والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی۔ کیا مطلب؟ یعنی زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ انسانیت کی تاریخ، گزشتہ قوموں کو دیکھ لو، گزشتہ افراد کو دیکھ لو، اپنے آبا و اجداد کو دیکھ لو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو موجود ہیں، جو گزر چکے اس دنیا سے، انسانیت کی تاریخ دیکھ لو، قوموں کی تاریخ دیکھ لو، تمہیں یہی گواہی ملے گی۔ یہ زمانہ کیا گواہی دیتا ہوا تمہیں ملے گا؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ خسر، خسارہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نقص، جس سے لفظ نقصان ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ نقص یا نقصان کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کچھ کمی ہو جانا۔ مثال کے طور پر میرے پاس 100 روپے کی رقم تھی، کسی وجہ سے 90 روپے میرے پاس رہ جائیں تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ خاص طور پہ اگر مثلا میں کچھ رقم لے کر، کوئی شخص کوئی رقم لے کر تجارت کے لیے نکلا اور جب وہ واپس آیا تو جو رقم گھر سے لے کر نکلا تھا اس سے بھی کم تھی اس کے پاس، اسے کہتے ہیں نقصان۔ या बाज़ औक़ात ताजर लोगों को जब जितना उनका अंदाज़ा है उतना मुनाफा ना हो तब भी वो कहते हैं नुकसान हो गया। तो नुकसान कहते हैं कुछ कमी हो जाने को, और खुसर या खुसरान या जिसे हम उर्दू में खसारा कहते हैं, अलबत्ता अरबी वाला माना हमारे मोरद नज़र है, वो ये है खुसर यानी जो कुछ था वो भी गंवा बैठना, जो कुछ जो सरमाया जो कैपिटल किसी के पास था वो भी सारा ज़ाया कर बैठे। तो कुरान मजीद की ये मुख्तसर लेकिन बहुत ही बड़ा पैगाम देने वाली सूरह मुबारका क्या पैगाम दे रही है कि तुम अगर सारी इंसानियत की तारीख पर निगाह डालो, जमाने पर निगाह डालो, तो वो तुम्हें गवाही देता हुआ मिलेगा कि इंसान खुसर में है, खसारे में है, यानी इंसान अपना बेहतरीन सरमाया जाया कर रहे हैं सिवाय ईमान वालों के। जैसे कि अगली आयत में बात वाज़े हो जाएगी मज़ीद। नुकसान में कौन है? जो ईमान ना लाए अल्लाह के पैगाम पर, अल्लाह के रसूल पर, और उस ईमान का जो तकाज़ा है अमल सालेह वो ना करे, और फिर अमल सालेह करने के लिए सिराते मुस्तकीम पर जब इंसान चलता है तो मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं। अब ये जो मोमिनों का ग्रोह है ये इन मुश्किलात से जब दोचार होता है तो एक दूसरे को तलकीन करते रहते हैं, ताकीद करते रहते हैं कि हक को नहीं छोड़ना और मुश्किलात के मुकाबले में सब्र करना है। एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं, एक दूसरे को भलाई की दावत देते हैं, एक दूसरे को बुराई से मना करते हैं। इस ग्रोह के अलावा बाकी तमाम इंसानियत, बाकी तमाम इंसान, उनकी हालत क्या है? जो सरमाया अल्लाह ने उन्हें दिया था, जिंदगी दी थी, जिस्म दिया था, सलाहियतें दी थी, अक्ल दी थी, आंखें दी थी, कान दिए थे, जुबान दी थी, सब कुछ अता किया था, ये सरमाया था, ये हमने खुद हासिल नहीं किया था, ये किसी ने दिया था हमें, कि इस सरमाए को इस्तेमाल करो, और अगर सही इस्तेमाल करोगे, मेरी जो जो ये सरमाया देने वाला तुम्हारी जिंदगी के लिए जो प्लान तुम्हें दे रहा है, जो शरीयत तुम्हें दे रहा है, अगर इसके मुताबिक चलोगे और इन चीज़ों को, ये जो सरमाया तुम्हें दिया है, जो नेमतें तुम्हें दी हैं, जो रिज्क के हलाल मसलन तुम्हें दिया है, उसको इस तरह इस्तेमाल करो कि दुनिया भी तुम्हारी बाइज्जत और अच्छी गुजरे और आखिरत भी तुम्हारी बेहतरीन हो जाएगी, अबदी अजर अता करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, कहीं और से जिंदगी का प्लान लिया, कहीं और से अकदार जिंदगी हासिल की, कहीं और से तसव्वुर कायनात लिया, कहीं और से तसव्वुर जिंदगी लिया, तो खसारे में पड़ गए। क्यों? हर गुजरने वाला लम्हा जिंदगी के सरमाए को कम कर रहा है। हर सालगिरह का जश्न, हर बर्थडे पार्टी, लोग तो उस पर खुश हो रहे होते हैं, बाज़ लोग क्लैपिंग्स कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, लेकिन वो बर्थडे बता रही होती है कि जितना मोहलत तुम लेकर आए थे एक साल कम हो चुका है। और जो आकिल होता है उसको जब ये सिग्नल मिलता है कि तेरे तेरे खेलने का टाइम, तेरी गेम का टाइम अब कम रह गया है, तो वो तो और होशियार हो जाता है और ज़्यादा। आपने देखा होगा आखिरी मिनट्स में अगर दो टीम्स में मैच हो रहा हो, मसलन फुटबॉल मैच हो रहा हो, और वो मिसाल के तौर पर दोनों के या वो बराबर हो, और या ये कि एक टीम एक गोल से आगे हो, तो दोनों टीमें उन आखिरी टाइम उस आखिरी आखिरी मिनट्स में, जैसे जैसे एंड का टाइम, मैच के एंड का टाइम नज़दीक आता है, अख्ताम का टाइम नज़दीक आता है, तो दोनों तरफ के खिलाड़ी पूरा जोर लगा देते हैं कि इस आखिरी टाइम से अपने हक में इस्तफादा कर लें। तो हर गुजरने वाला साल, हर सालगिरह का जश्न हमसे क्या कह रहा होता है? हमसे कह रहा होता है कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये जो घड़ी सिग्नल देती है ये कह रही होती है कि तुम्हारा टाइम कम हो गया है और ज़मीन तुम पर तंग होती जा रही है, वक्त जितना लेकर आए थे, जितना अल्लाह ने तुम्हारा इस दुनिया में रहने का वक्त रखा था, कम हो गया है, भाग दौड़ कर लो। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाओ ताकि खसारे से बच सको। खसारा क्या है? इंसान मर जाए, ना आँख उस तरह इस्तेमाल हुई जिस तरह खुदा ने चाहा था, ना कान इस्तेमाल हुआ, ना ज़ुबान इस्तेमाल हुई, ना जो अल्लाह ने रिज़्क इन 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 हाथों से, इन इस अक़ल से अल्लाह की दी हुई इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो कुछ कमाया था उसे भी खुदा के रास्ते में इस्तेमाल न किया। तो अब जब मरा तो सब कुछ चला गया, सरमाया ज़ाया हो गया, नेमतें ज़ाया हो गई। इस माना की तरफ ये आयत इशारा फरमा रही है और अल्लाह इंसानियत की सारी तारीख को इस पर गवाह बना रहा है। अगर हम असर का माना वसी ले लें, बस कसम है जमाने की, यानी जमाना गवाह है, इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन इंसान खसारे में, यानी सब कुछ जाया कर रहा है, अपना सारा सरमाया अपना जाया कर रहा है, अल्लाह से कट कर, अल्लाह के बताए हुए कानून से हट कर, नाफरमानी करके जाया कर रहा है अपने आप को। कौन इस जाया करने और जाया होने वाले ग्रोह में शामिल नहीं है? आयत नंबर 3, इल्लल्लज़ीन आमनु, सिवाय उनके जो ईमान लाए। ईमान क्या है? दिल के अंदर से तस्लीम कर लेना, दिल से मान लेना, दिल से कबूल कर लेना। और जो रिवायात अहले बैत अतहार सलामुल्ला अलैहिम में आया है उसके मुताबिक क्या है कि ईमान 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, ज़ुबान से दिल से मान लेना और ज़ुबान से इकरार करना, यानी जो ज़ुबान कह रही है इकरार कर रही है दिल में वही है, और जो दिल में है ज़ुबान से भी उसका इकरार कर रहा है, और तीसरी चीज़ अमल करना। और कुरान ने क्या कहा? इल्लल्लज़ीन आमनु, सिवाय उन लोगों के, यानी खसारे में कौन लोग नहीं है? वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और अमल किए। कौन से अमल? अमलुस्सालिह, वअमिलुस्सालिहात। और फिर जब ये ईमान ला चुके और अमल सालेह के रास्ते पर जिस तरह अल्लाह ने बयान किया था अमल सालेह, उस दीन की तहरीक में शामिल हो गए, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने लगे, तो फिर देखा कि मुश्किलात का सामना है। आप अल्लाह के नेक, वाकयन दीन फहम, एक वो नेक होता है जो रहबानियत टाइप का दीन अपना के बैठा होता है, यानी उसके दीन का उसकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, बड़े वजीफे करता है, बड़े विर्द करता है, बहुत नवाफिल पढ़ता है, लेकिन मुआशरे के साथ उसके दीन का कोई ताल्लुक नहीं, उसका इनफरादी दीन है। ये तहरीफ शुदा बड़ा ख़तरनाक दीन है। ऐसे लोग न सिर्फ ये कि मुआशरे में अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, बल्कि अक्सर औकात उन लोगों के ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हो जाते हैं और अपनी मुकद्दस मआब शख्सियात को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं जो मुआशरे में अल्लाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए उठ खड़े होते हैं। ये लोग अक्सर उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाते हैं, और चूंकि अपनी इबादत की वजह से, अपने वज़ायफ़ व फलान की वजह से बड़े मुकद्दस मआब होते हैं, तो लोग इनकी बातें फिर सुनते भी हैं, मुतदय्यिनीन के दरमियान तफरके का बायस बन जाते हैं। निशानी क्या है इनको पहचानने की? कि वैसे बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार बना हुआ है, बड़े विर्द वजीफे करता है, हर वक्त जिक्र की हालत में होता है, ज़ुबान चल रही होती है, लेकिन इज्तमाई मामलात से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, कुरान मजीद के बताए हुए दीन, मुकम्मल दीन से इसका ताल्लुक नहीं होता। अपनी मर्जी के जो इसको सूटेबल लगते हैं आमाल, वो लेकर बड़े आराम से, यानी अलग थलग ज़िंदगी ये शख्स गुजार रहा होता है। तो ये उनकी बात नहीं हो रही, ये तो उनकी बात हो रही है जो मर्द मैदान है, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए और अमल साले करते हैं। खुद ये आयत बता रही है, ये जो अगला आखिरी दो है ना, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, ये खुद बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती, और पूरा कुरान भरा पड़ा इनके बारे में। और जो मैदान से भागने वाले हैं, डटने वाले नहीं हैं, उनकी मजम्मत से कुरान भरा पड़ा है। वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ की वसीयत और नसीहत करते हैं, यानी एक दूसरे से कहते रहते हैं। कब ये ज़रूरत पड़ती है कि हक को मान लिया, दीन को मान लिया, अब जो दीन की तालीमात हैं, गोया दीन की सरबलंदी की तहरीक का एक मुजाहिद बन गया, एक सिपाही बन गया, दीन के अहदाफ, दीन की अकदार की सरबलंदी के लिए उठकर खड़ा हो गया। अब मुआशरा मुखालफत करता है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुआशरे में एक गोया के लोग उसे कबूल नहीं कर रहे, चूँकि मुआशरा तो दुनिया परस्ती में लगा हुआ। अब यहाँ पर ज़रूरत पेश आती है इसे सहारे की, और वो बेहतरीन अल्लाह और रसूल और अहले बैत अतहार के बाद वो सहारा क्या है, उसके मोमिन भाई, एक दूसरे के शाना बशाना अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए, गोया मर्द मैदान है, मुजाहिद है, जो मैदान में खड़े हुए हैं और मैदान की सख्तियों को देखकर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते, हक की ताकीद करते। क्या मतलब, यानी कहते हैं हक को नहीं छोड़ना, ये मुश्किलात आर्जी है, और मुश्किलात के मुकाबले में क्या करना है, वतवासौ बिसब्र, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत यानी नसीहत करते। ये जो मरने वाले के लिए लफ्ज़ वसीयत इस्तेमाल होता है, ये एक ख़ास इस्तेमाल है, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने लिए वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला पाक है इससे कि उसे मौत नामी, फना नामी कोई चीज़ आए। अल्लाह ताला फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारे औलाद के बारे में। क्या मतलब, अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्लाह कोई जाने वाला है कहीं, ऐसा नहीं। बस वसीयत का माना वही तकरीबन नसीहत वाला है, लेकिन एक ख़ास इस्तेमाल मरने वाले की नसीहत के बारे में, जब इसका एक ख़ास इस्तेमाल बन गया, एक असलाह बन गई, जिसको वसीयत कहा जाता है, वरना वसीयत का माना वही नसीहत ताकीद का है। बस एक दूसरे को हक की नसीहत ताकीद करते हैं, तलकीन करते रहते हैं, और सब्र की ताकीद और नसीहत और तलकीन करते रहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। मुश्किलात शदीद होती हैं इनके रास्ते में, तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो ग्रोह है कि जो खसारे में नहीं है, वरना अल्लाह ताला फरमा रहा है, ज़माना गवाही दे रहा है, तारीख इंसानियत गवाही दे रही है कि इनके अलावा मोमिनों और अमल सालिह करने वालों के अलावा इंसान सब के सब अपना असल सरमाया भी ख़राब करके दुनिया से चले गए, असल सरमाया भी ज़ाया करके दुनिया से चले गए। सूरतुल असर के बाद सूरतुल हुमज़ा, पहले हम इसकी तिलावत करेंगे और उसके बाद इसका तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة। سورة حمزة کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدا الرحمن الرحیم، آیت نمبر ایک، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ہلاکت ہے، حسرت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب تلاش کرتا ہے اور تانے دیتا ہے، لفظِ ویل اس کے اندر دو معنی پوشیدہ ہیں. جب عربی زبان میں ایک شخص دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے ویل لک, تیرے لیے ویل ہے, تو اس ویل کے اندر کون سے دو میسج چھپے ہوتے ہیں؟ ایک یہ کہ جو تو کام کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہلاکت اور بربادی ہے, اور دوسرا معنی یہ چھپا ہوتا ہے کہ حسرت ہے کہ تو کام یہ کیوں کر رہا ہے. یعنی گویا کہ یہ اس کو خبردار بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو روک رہا بھی ہوتا ہے. یعنی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے حسرت ہے کہ تو یہ کام کر رہا ہے, تجھے نہیں کرنا چاہیے, رک جا اس کام سے. تو یہ پیغام شامل ہوتے ہیں کس کے معنی میں؟ لفظ ویل کے معنی میں. ہمزہ اور لمزہ, یہ دونوں الفاظ اتنے معنی کے اعتبار سے قریب ہیں علماء لغت کی نظر میں کہ بعض نے کہا کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں اور بعض نے ان کا فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ایک فرق مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ بعض نے یہ فرمایا کہ ہمزہ کا فرق لمزہ سے یہ ہے کہ ہمزہ وہ ہے کہ جو پشت کسی کی پشت پیچھے برائی کرتا ہے, عیب گوئی کرتا ہے, اور لمزہ وہ ہے جو منہ پر تانے دیتا ہے اور منہ پر عیب تراشی کرتا ہے. یہ دونوں بری باتیں. روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام میں جو بات آئی ہے, مثلا ایک روایت جو نقل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے درمیان نصیحت کی اس نے اسے رسوا کیا. غور فرمائیے اس نصیحت سے کیا مراد, نصیحت کس بات پہ ہوتی ہے؟ کہ بھائی تم یہ غلط کام کر رہے ہو, یہ میرے بھائی آپ یہ کام نہ کریں. یہی کام ایک دفعہ لوگوں کے درمیان محفل میں سب کو پتہ چل رہا کیا جائے اور ایک دفعہ تنہائی میں کیا جائے. جب محفل میں کیا جاتا ہے جس کو نہیں بھی پتا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے, یہ کام نہ کرو. تو فرمایا جس نے اپنے بھائی کو محفل میں لوگوں کے درمیان نصیحت کی اس نے اسے رسوا کر دیا, اور جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ کر دیا, زینت بخشی, مزین کر دیا. کیا مطلب؟ کہ وہ جو عیب تھا اب وہ دور کرے گا. اگر لوگوں میں عیب بیان کرتا شاید وہ ضد میں آ جاتا, کیونکہ اس کی انسلٹ ہوتی, وہ اپنی بے عزتی کا احساس کرتا تو ضد میں آ جاتا. یہ مزاج ہے کس کا؟ مومنین کا, جو اللہ نے بتایا, اہل بیت اطہار نے بتایا, رسول اللہ نے بتایا. توجہ فرما رہے. لیکن اس کے برعکس مزاج کون سا ہے؟ ہمزتن لمزہ. تانا دو صفات ہیں, یہ عیب گوئی کرنا اور تانے دینا. عیب گوئی عام طور پر پس پشت ہوتی ہے اور تانا دینا عام طور پر منہ پہ ہوتا ہے. دونوں غلط کام ہیں. یہ دو کام کرنے والے, یعنی عیب گوئی, ظاہر بات ہے جس نے عیب گوئی کرنی ہے, عیب بتانے ہیں, اس سے پہلے اس میں ایک اور صفت ہونی چاہیے اور وہ ہے عیب تلاش کرنے. بعض مردوں میں, بعض عورتوں میں یہ بیماری بڑی زبردست طریقے سے ہوتی ہے. ان کے گویا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر انہیں دوسرے کے گھر کی رپورٹ نہ ملے تو. لذت محسوس کرتے ہیں اور رپورٹ پھر لیتے ہیں, خبریں لیتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, تو میں رہتے ہیں. جبکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا, تجسس نہ کرو. تجسس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے تو میں رہنا, کہ اس کے گھر میں کیا لڑائی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آج اس کی شکل کیوں بنی ہوئی ہے فلان. ایک دفعہ ہے کسی کی شکل بنی دیکھنا اور درد محسوس کرنا کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو میں اس کا ساتھی بنوں. ایک دفعہ ہے مزہ لینا کہ کوئی اس سے اختلاف ہے, کوئی پرانی اس سے کوئی چپکلش ہے, کوئی ناراضگی ہے. اب اس نے دیکھا کہ ہر روز تو ہنستا ہوا آتا تھا, آج ذرا پریشان ہے, دل میں خوش ہوتا ہے. یہ مومن کی علامت نہیں ہے. ये और कुछ नहीं तो ईमान के नाकिस होने की अलामत। दूसरों की दुखों पर लज्जत का एहसास करना और फिर अपने यारों दोस्तों में बैठ के कहना कि आजकल लगता है किसी मसले में फंसा हुआ है, मज़ा आ रहा है उसको। तो ये बेईमानों के मुंह से निकलने वाले जुमले होते हैं। अल्लाह ने सिफात बताई हुई है और मैं बार बार कहा करता हूँ कि इसमें मसलक का फ़र्क नहीं है। ये मसलक शैतानी मसलक है, असल मसलक, असल फ़िरका शैतानी फ़िरका होता है। ऊपर से लेबल, चाहे शिया मसलक हो, चाहे बरेलवी मसलक हो, चाहे देवबंदी मसलक हो, चाहे कोई भी नाम रखा हो, अंदर से शैतानी मसलक अगर पहचानना है आपने, कुरान मजीद ने सिफात बताई हैं। इबलीस के मसलक अहले हम मसलक और इबलीस ने जो फ़िरका बनाया हुआ है उस पर चलने वालों की सिफात अल्लाह ने कुरान में बड़ी वाज़े तौर पर बताई होती हैं। ऊपर बेशक लिख ले मेड इन चाइना या मेड इन जापान या मेड इन फलान, फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो शख्सियत है वो मेड बाय शैतान होती है। तो वो सिफात कुरान मजीद बताता है। यहाँ पर भी आप देखिए, वैलुल लिकुल हुमज़ातिल्लुमज़ा, हलाकत है, बर्बादी है। किसकी नज़रों में? कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है। किस सिफात वाले के लिए? लिकुल हुमज़ातिल्लुमज़ा, हर ताना देने वाले, ऐब गोई करने वालों वाले के लिए। आयत नंबर दो, आयत नंबर दो में उस तबके का जिक्र किया गया है जिन में ये पहली आयत वाला मरज ज्यादा होता है, और वो कौन है? मालदार लोग। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो मालदार हैं, हमारे में ऐब ही कोई नहीं, और गरीब उनको ऐब वाले नजर आते हैं, अपने कपड़ों की वजह से, अपने हो सकता है ज्यादा उनके पास चूंकि उस तरह की क्रीमें अवेलेबल नहीं होती, उस तरह के ब्यूटिशन अवेलेबल नहीं होते, उस तरह का सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द माहौल गरीबों को अवेलेबल नहीं होता, तो उनकी चेहरे की रंगत उमरा की रंगत से फ़र्क होती है। तो ये अपने आप को बर्तर समझते हैं, उनको घटिया समझते हैं। तो अल्लाह का तो किसी से तकल्लुफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, कौन है ये हुमज़ातिल्लुमज़ा, ताने देने वाला और ऐब गोई करने वाला, जो माल जमा करता है और उसे गिनता रहता है। बड़ा शौकीन है किसका? एक तो माल जमा करने का और फिर उसे गिन गिन के खुश होना। कुरान की आयात आईना है। मैं अपने आप को देखूं कि मेरे पास जब माल आता है, एक तो ये कि मुझे माल जमा करने का शौक है। किस लिए शौक है? गिन गिन के खुश हो तो मेरे पास अब इतना हो गया, इतना हो गया। जिसकी ये सिफत है, याद रखिए, अल्लाह ताला खालिक नफ्सियात है, वो पहली वाली सिफत भी उसके अंदर आ जाएगी। क्यों? जिसके पास माल नहीं है वो भी इसकी नज़रों में बड़ा ऐबदार है, घटिया है, बेवकूफ़ है, टैलेंट नहीं है उसमें, इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए कि माल नहीं है। माल का मेयार बड़ा ख़तरनाक मेयार है। जिनका मेयार माल था, सूरह ज़ुख़रुफ़ में पहले कुरान मजीद में गुजर चुका, मक्के वाले और उस इलाके के लोग जिनका मेयार सिर्फ माल था, उन्होंने माल न होने की वजह से कहा कि आप रसूल नहीं हो सकते, रसूल पाक से कहा, क्योंकि वो समझते थे कि मालदार आदमी का ही राइट बनता है उसके पास सारी चीज़ें हों, हत्ता कि रिसालत भी। وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, और उन्होंने कहा कि ये कुरान किसी अजीम शख्स पर, अजीम यानी पैसे में अजीम, चाहे वैसे घटिया तरीन इंसान हो, पैसे में अजीम होना चाहिए, किसी अजीम आदमी पर इन दो करियतैन, मक्का और ताइफ मुराद हैं, इन दो करियों में किसी अजीम शख्स पर कुरान नाजिल क्यों नहीं हुआ? रसूलुल्लाह अजीम नहीं है, अगरचे सादिक हैं, अगरचे अमीन हैं, अगरचे इनके झगड़ों का फैसला करते हैं, अगरचे पाकीज़ा तरीन ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अजीम नहीं है। अजीम कौन है? जिसके पास माल है। तो ये जो माल परस्त है और माल के मेयार से परखता है लोगों को, अल्लाह ताला इसको क्या खुशखबरी दे रहे हैं? वैलुन, तेरे लिए हलाकत है। सिफत तेरे अंदर क्या आ जाएगी? उमज़ातिल्लुमज़ा, तू ताने भी देगा, अकड़ ताने देने वाला एक किस्म का मुतकब्बिर भी होता है, तभी तो ताना देता है अकड़ के। आजजी और इनकसारी वाला खुदा से डरने वाला ताने देगा, उसकी ज़ुबान ताने देगी लोगों को, ऐब बताएगा लोगों के, ऐब की टो में रहेगा नहीं। लेकिन ये मालदार, अभी सूरह अलक चंद दिन पहले गुजरी, आपने सुनी वहां पे क्या फरमाया था, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना, के खबरदार इंसान तुगयान करता है, सरकशी करता है, कब, सबब क्या होता है, अर्राहु इस्तगना, जब अपने आप को बेनियाज देखता है। बेनियाज देखता है क्या मतलब, माल ज्यादा आ जाता है, समझता है मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, जो मैं करना चाहूं माल से कर सकता हूं, अपने ऐब भी छुप जाते हैं उसकी निगाहों से, और दूसरों के ऐब उसको ज्यादा, खास तौर पे जिनके पास माल कम है उनके ऐब ज्यादा दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो सिफात को अल्लाह ने आपस में मरबूत किया है, कनेक्ट किया है। ताने देने वाले के लिए हलाकत है, ऐब गोई करने वाले के लिए हलाकत है। कौन है ये, जो माल जमा करता है खुश होता है। हो सकता है बहुत बड़ा सेठ ना भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा अरबपति करोड़पति ना भी हो, छोटा सा दुकानदार हो, लेकिन सिफत यही है, माल जमा करता है खुश होता है, मेरा माल अब ज्यादा हो गया, अब फलान हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। माल की मोहब्बत में, माल के तनाजुर में हर चीज को देखता है, उसके अंदर ये सिफात भी पैदा हो जाती। तीन, यहसब अन्नमा लहू अखलदा, समझता है, गुमान करता है, हिसाब उसने यूं हिसाब कर लिया है कि उसका माल उसे हमेशा बाकी रखेगा। यानी ये जो हालत है, माल उसके पास ज्यादा है, जो उसका दिल चाहता है कर लेता है, जो चाहता है खरीद लेता है, कहीं फंस जाता है रिश्वत देके निकल जाता है, तो समझता है कि हमेशा यही रहेगा। अगर तवज्जो ना करें, खबरदार ना हो, तो हम में से बहुत सारे यूं ही होते हैं। अपनी मौजूदा जिंदगी अगर खास तौर पर वो आराम और आसाइश और माल वाली हो, तो नहीं सोचते कि ये जा भी सकती है। हमने कई लोगों को देखा, उनके बारे में सुना, एक जमाने में बड़े मालदार थे, बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ, बड़े बड़े कारोबारियों के साथ, बड़े बड़े सियासतदानों के साथ उनका उठना बैठना था, बड़ी बड़ी ऊंची महफिलें थी, फिर अचानक कारोबार में नुकसान हुआ, सारे पंछी उड़ गए, सारे दोस्त छोड़ के चले गए। ऐसा होता है, जो खबरदार है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है और होना ही होना है, मौत की शक्ल में, दुनिया में नुकसान ना भी हो, मौत की शक्ल में होना ही होना है, वो खबरदार रहता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, जिसके पास जाना है उसको नाराज नहीं करता, वो हो मजा तिल लो मजा नहीं होता, ताने देने वाला, ऐब गोई करने वाला नहीं होता, वो माल जमा कर करके खुश होने वाला, मेरे पास इतना ज्यादा हो गया, क्यों खुश हो रहे हो, चले जाना तुम्हारे पास। हाँ, अल्लाह का शुक्र करो अगर माल को अपनी ज़रूरियात के साथ साथ फिर उसके बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, फिर और बात है, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन ये उसकी बात हो रही है जो सिर्फ माल की मोहब्बत में अपने आप को क्या से क्या समझता है। यहसब अन्न मालहु अखलदा, ये गुमान करता है, इसने ये हिसाब कर लिया है, ये समझ बैठा है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। कल्ला, आयत नंबर 4, कल्ला, हरगिज नहीं, गलत समझ बैठा। थोड़ा सा गौर भी करे तो उसे पता है कि गलत समझ बैठा है, मरना है तूने, तू खुदा को भी ना मान तब भी तू मौत का इनकार नहीं कर सकता, मरना है तुझे। लेकिन ये माल का नशा जब इंसान को हो जाता है, फिर उसको सारी बातें थोड़ी समझ आती, वो फिर नशा ही उसको दिखा रहा होता है जो कुछ दिखा रहा होता है, नॉर्मल अकल नहीं दिखा रही होती। तो माल का नशा खतरनाक तरीन नशा है, आप दुनिया में देख सकते हैं मालदार क्या क्या हरकतें करते हैं बाजू का। 4, कल्ला, हरगिज नहीं, लयुंबदन फिल हुतमा, वो चिकनाचूर कर देने वाली आग में जरूर फेंका जाएगा। एक लफ्ज है लयुंबदन, ये बना है नबदा से, नून बे और दाल, इसका माना सुन ले, फेंकने के माना में है, लेकिन हर फेंकना नबदा नहीं कहलाता। अरबी जुबान में नबदा का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, जब आप किसी चीज को गैर अहम अन इम्पॉर्टेंट समझ कर फेंक देते, तब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तू तो दुनिया में बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा सदरे महफिल बनता था, बड़े तेरे आगे पीछे लोग चला करते थे, लेकिन ये जो हरकतें तूने सिफात अपने अंदर बना ली थी और जो हरकतें तूने की थी, तुझे इस तरह जहन्नम में फेंका जाएगा जैसे तू कोई अहम चीज़ ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपनी जेब में हाथ डाला, ठीक है, अंदर देखा पुराना कोई टिश्यू पड़ा हुआ था, आपने देखा और हकारत से उसको फेंक दिया। इसे कहते हैं नबदा, लयुम्बदन। जिनको आदत है कि जहां भी जाए उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए, बड़े उनको अजीम समझा जाए, लोग उठ के खड़े हो जाएं, वो इस आयत को भी गौर करें कि ये सिफात तो नहीं है कि जिसका नतीजा लयुम्बदन्ना है। लयुम्बदन्ना, ये जो नबदा की शक्ल बदली है ये ताकीदों की वजह से बदली। ला हतमन, युम्बदन्ना हतमन, हतमन इसे फेंका जाएगा एक हकीर चीज की तरह। किस में फेंका जाएगा? फिल हुतमा, हुतमा में। हा पा जिसे हम तोए कहते हैं, और मीम, इसका माना होता है किसी को पीस के रख देना, कुचल के रख देना, चिकना चूर करके रख देना। यानी ऐसी आग है कि जो, अब वो आग है या आग के साथ कुछ और भी चीज़ें होंगी जिससे ज़र्ब लगेगी उसको, और वो कुचला भी जाएगा, जलेगा भी, कुचला भी जाएगा। खुदावंद आलम हम सबको इस अजाब से अपनी पनाह में रखे। लयुम बदन नफिल हुतमा, माल तुझे हमेशा बाकी नहीं रखेगा, हरगिज नहीं, वो चुकना चिकना चूर कर देने वाली आग में जरूर फेंका जाएगा। पांच, वमा अदरा कमल हुतमा, ये हुतमा के लफ्ज से ऐसे ही ना आगे गुजर जाओ। तुम्हें किसने बताया है, आपको किस चीज ने बताया हुतमा क्या है, और आपको किस चीज ने बताया वो चिकना चूर कर देने वाली आग क्या है? छह, नारुल्लाहिल मुकदा, अल्लाह की भड़काई हुई आग। नारुल्लाह, अल्लाह की आग, हर आग अल्लाह की आग है, हर साया अल्लाह का साया है, लेकिन ये खास तौर पर अल्लाह फरमा रहे हैं वो आग अल-मुकदा, भड़काई गई। आग तो जो भी जलाता है जाहिर है उसको भड़काता है जलाने के लिए, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा रहा हो कि ये अल्लाह ने भड़काई है, ये आग अल्लाह ने जलाई है और अल्लाह ने भड़काई है, तो फिर वमा अदरा कमल हुतमा, तुझे क्या चीज़ बताएगी कि वो हुतमा क्या है? तू तो दुनिया में थोड़े से गर्म टेम्परेचर पर भी सब्र नहीं कर सकता, दुनिया की आग पर कोई तुझे धकेले जलती हुई आग में तू नहीं जाना चाहेगा, जहन्नम की आग को तू कैसे बर्दाश्त करेगा? बस माल जमा कर कर के गिन गिन के खुश मत हो, लोगों को ताने ना दे, ताना वही देता है जो दूसरे को घटिया समझता है। लोगों की ऐब गोई मत कर, अल्लाह ने मना किया है, ना उसके सामने ना पुश्त पीछ, पुश्त के उसके पसे पुश्त। कुछ लोग जब गीबत करते हैं तो अपने आप को एक शैतानी जुमले से सेटिस्फाई कर लेते हैं, मुतमिन कर लेते हैं। क्या कहते हैं, मैं मुंह पे भी कर लेता हूँ उसके, मुंह पे ले आओ, मैं उसके मुंह पर भी कहूंगा। तो तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम अभी कर रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है कि दूसरे लोगों में उसका ऐब बयान करो। तवज्जो फरमा रहे, ये शैतानी जुमला है, मैं ये बात उसके मुंह पर भी कर सकता हूँ। ये असल में ये बेईमान, चूंकि इसको पता होता है मैं गीबत करने लगूँ और सामने वालों के जहन में ये जाएगा, तो ये बेईमान अब अपने वो जो गीबत का इसको शैतानी प्रेशर आया हुआ है वो भी नहीं रोक पा रहा, अपनी उस शैतानी हरकत को भी नहीं रोक पा रहा, और उसको जस्टिफाई भी करना चाहता है, उसकी तावील भी करना चाहता है, तो अपने ऊपर अपने आप को दूसरों के सामने बहाना पेश करता है, कहता है मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं उसके मुंह पर भी कर लूँगा। तो मुंह पर भी कर लेगा तब भी तू गीबत कर रहा है, मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है कुरान मजीद के बकौल। तवज्जो फरमा रहे, तो ये बाज़ गलत काम करने के लोगों ने शैतानी जस्टिफिकेशंस, शैतानी तावीलें बनाई होती, कर लो, और अपने पास से उसका कोई दलील भी इंसान कर लेते। नारुल्लाहिल मुकदह, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। सात, अल्लती, आग की सिफत बयान हो रही है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो कि जो तुलू करेगी यानी चढ़ जाएगी, कहाँ चढ़ जाएगी, दिलों पर, यानी न सिर्फ ये कि बदन जलेंगे दिल भी जलेंगे। अब यह दिल से क्या मुराद है, याद रखिए दिल से मुराद कुरान में ये दिल नहीं होता जो हमारे बदन में खून को पंप कर रहा होता है, इससे मुराद वो मरकज है इंसान के अंदर का, आप उसका नाम जो भी रख लें, जहाँ अकल रहती है, जहाँ इंफॉर्मेशन इत्तलाआत जमा होती हैं, जहाँ एनालाइज होती हैं और फिर इंसान वहीं पर डिसीजन लेता है, अकल होती है, जज्बात होते हैं, सब का मिक्सचर, यानी मेन सेंट्रल जगह। तो आयत क्या कह रही है कि वो जहाँ वो मरकज जहाँ से तू ये ताने तैयार करके बाहर निकालता था, जहाँ से ये ऐब गोई के इरादे करता था तू, जहाँ तू माल को जमा कर करके, जहाँ तेरे माल की मोहब्बत जहाँ बसा करती थी, वहाँ पर ये आग चढ़ेगी, वहाँ उस आरजुओं को, उस खराबियों के मरकज को, जिसमें तुझे बड़ी लज्जत का एहसास होता था ये काम करके, उस वहीं के जहाँ तुझे लज्जत महसूस होती थी, वहीं तुझे जलन महसूस होगी, और आम जलन नहीं, नारुल्लाहिल मुकदह, अल्लाह की भड़काई हुई आग की जलन, वहीं पे तुझे जलाएगी। इसका तसव्वुर, इन अल्फाज से तसव्वुर इंसान कर सकता है, जिसको बाहर से भी आग जला रही हो और उसके अंदर से भी, क्या होगी वो खुदा बंदे आलम बेहतर जानता है, लेकिन उसने बताया कि वो तुम्हारी सोचों की जगह को भी जलाएगी, जहां से तुम गलत अफकार और गलत सोचें बनाया करते थे। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक पहुंच जाएगी, तुलू करेगी, तत्तलिउ यानी चढ़ जाएगी उनके ऊपर, आठ, इन्नहा अलैहिम मुसदा, बेशक वो उन पर मुहित हो जाएगी, यानी हर तरफ से वो आग उनको घेरे में ले लेगी। आयत नंबर 9, फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे तुलानी सतूनों में, आप तसव्वुर करें एक सतून, एक कैप्सूल टाइप का, के उसके अंदर अजाब दिया जा रहा है, उससे निकलने का, उसके खुलने का कोई तरीका नहीं है, वो जलने वाला भी उसी कैप्सूल में है और जलाने वाली आग भी, हुतमा भी उसी कैप्सूल में है, क्या कैफियत हो सकती है। इंसान मरना चाहेगा फौरन ताकि तकलीफ ना हो, मरेगा नहीं, कुरान मजीद ने बयान किया मरेगा नहीं। अब आप तसव्वुर करें कि एक आग के सुतून में, एक ऐसा सुतून जिसके अंदर आग भरी हुई है, उसमें इंसान जल रहा है, और आग भी कोई मामूली आग नहीं है, उसमें जल रहा है और मौत भी नहीं आती, तकलीफ कम भी नहीं हो सकती, कोई नहीं चाहेगा हम में से। अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कुरान पढ़ने के आदाब में, कि जब ऐसी आयात पर पहुंचो जिसमें जहन्नम का जिक्र हो, अजाब का जिक्र हो, तो वहाँ पर रुक कर अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, उस अजाब से खुदावंद आलम महफूज रखे। सूरतुल हुमज़ा को हम यहाँ पर तमाम करते हैं, और इस दर्स को भी इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम ऐसे काम करने की तौफीक दे कि जो जन्नत में जाने का सबब है, उसकी रज़ा का सबब है, और ऐसे तमाम काम करने से परहेज़ करने की तौफीक दे कि जो हुतामा में जाने का सबब है, लोगों के ऐब बयान करना, लोगों को ताने देना, माल जमा करके खुश होना, उस पर तकब्बुर करना, दूसरों को घटिया समझना, परवरदिगार आलम इन सिफात से बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।